प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग एक, लेक्चर नंबर 11। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्, सुरसुरनरपतिवंदने प्रविनष्टघाती कर्मणे प्रणमन करूं धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने वैशेष तीर्थंकरने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदु वणी हूँ मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने नमस्करण करिए रीते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं साम्य निजे नाति शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक ग्रंथ है, उस पर अमृत चंद्राचार्य जी ने तत्व प्रदीपिका नामक टीका लिखी हुई है और जयसेन आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी हुई है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से पहली पुस्तक के पृष्ठ संख्या 53 पर हम आ गए हैं। नई एडिशन में कौन सा है पेज? 65। हम यहाँ पढ़ते हैं, ये नीचे का पैराग्राफ हमारे यहाँ जहाँ से शुरुआत ना आगल कहे छे वहाँ से शुरुआत होती है। फिर से पढ़ना है कहाँ पर? एक एक मिनट, एक मिनट, ऊपर की बात थी क्या? देखो हाँ, उसके ऊपर से तीन लाइन पढ़ लेते थे। अच्छा नीचे आए थे पर मैंने वहाँ ना ये डाला है, ये पूरा पैराग्राफ शुरुआत से पढ़ेंगे। हाँ आगल कहे छे तेषां कथम विशेषो भेदो ज्ञायते इति परिहारम आह युक्तम उक्तम भवता परम किंतु ये प्रचुरेण शुभोपयोगी निवर्तन्ते। क्या कहते हैं कि ऐसे जो विशेष भेद है वो किस तरह से जाने जाएंगे तो उसका परिहार करते हैं, नहीं रूल आउट करते हैं कि तुमने कहा युक्तम उक्तम भवता, आपने कहा वो बराबर है परंतु प्रचुरेण शुभोपयोग वर्तन, ये प्रचुरता से मुख्यता से प्रधानता से शुभोपयोग है। चौथे पांचवे छठे गुणस्थाने प्रचुरेण एटले घनो शुभोपयोग वर्त। मिला दक्षाबेन? कौन सी एडिशन है, पुरानी की नई? 53 पेज है, नीचे का पैराग्राफ है सेकंड लाइन। यानी यहाँ जो देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, पहले दूसरे और तीसरे गुणस्थानों में घटता हुआ अशुभ उपयोग, तीनों ही गुणस्थान अशुभ उपयोग के बताए। कहते क्या शुभ उपयोग नहीं होता, पुण्य तो बनता है, तो कहते वो तो मुख्यतः अशुभ उपयोग की है। क्योंकि जहाँ मिथ्या तो पड़ा है वो तो सबसे बड़ा अशुभ पड़ा है, तो उसको अशुभ उपयोग की मुख्यता गिनी है। वहाँ शुद्धोपयोग तो है ही नहीं है, और शुभोपयोग भी है, अशुभ उपयोग मुख्यता अशुभ उपयोग की। चौथे पांचवें छठे में शुभोपयोग बढ़ता हुआ शुभोपयोग कहा, तो क्या वहाँ वितरकता नहीं है? तो है, होती है कभी कभी, परिणति भी चल रही है, परंतु मुख्यता शुभोपयोग की। और सातवें गुणस्थान से आगे के बारहवें तक के शुद्धोपयोग के आत्मस्थिरता के, क्योंकि तेरहवें चौदहवें को नहीं लेना, वो तो शुद्धोपयोग का फल है। इस तरह से उन्होंने विभाजन किया। उसी के बाद फिर दोहरा रहे, देखो चौथे पांचवें छठे गुणस्थाने प्रचुरेण एटले घणो शुभोपयोग वर्ते छे ते यद्यपि कापिने क्व अपि काले शुद्धोपयोग भावनाम कुर्वन्ति तथापि शुभोपयोगिना एव भण्यन्ते। क्या कहते हैं वे जो जीव है वो चूंकि यद्यपि ने चूंकि कभी कभी को अपि काले ने किसी काल में शुद्धोपयोग भावना यानी शुद्धोपयोग भाव रूप से भी परिणमते, यानी शुद्धोपयोग यानी वो आत्मस्थिरता जो है उस रूप भी वहां परिणमन चल रहा है, यानी शुद्धोपयोग भी कभी कभी होता है फिर भी, तथापि शुभोपयोगिनः एव भण्यन्ते, यानी उनको शुभोपयोगी ही कहते हैं। जाणू छे भाई, जाणू छे झीणू छे, झीणू छे सॉरी झीणू झीणू कर सूक्ष्म झीणू छे भाई। चौथे पांचवें अने छठे गुणस्थाने जे शुभ उपयोग कहो छे ते मुख्यपणे छे हाँ जबला का जब बाकी तो तेने पन शुद्धोपयोग भावनाम कुर्वन्ती तथापि शुभोपयोगी न एव भण्यन्ते। अंदर शुद्ध उपयोग चौथे पांचवें गुणस्थाने पन होय छे, परंतु तेने शुभ उपयोगनी मुख्यता गणीने शुभ उपयोगी कहेवामां आव्यो छे। येपि शुद्धोपयोगी न ते यद्यपि क्वापि काले हवे सातमा गुणस्थाने थी शुद्ध उपयोगी कहो छे तो तेने शुभोपयोगी न वर्तन्ते, यानी वहां पर भी शुद्धोपयोगी बताया है, फिर वहां से भी उनके शुभोपयोग होता है वहां पर, त्यांथी खसीने शुभोपयोग में आवे छे, यानी सातवा छठा भी चलता है वहां पर भी, तथापि शुद्धोपयोगी न एव कस्मात् बहुपदस्य प्रधानत्वात् आम्रवन निम्बवनवत इति। क्या कहते हैं यानी प्रधानता से बताया, जैसे कहते हैं कोई आम आम का वन बताया जाता है आम्रवन, कोई नीम का, हाँ वहाँ अन्य भी बहुत सारी वनस्पतियां ने वृक्ष पाए जाते हैं, मुख्यतः आम के वृक्ष ज्यादा है तो कहेंगे आम्रवन। मराठी में कहते हैं आमराई, आमराई शू कहे छे के आंबा नु वन छे एम कहेवाय, तेमा बीजा झाड़ तो होय छे छता आंबा घना होय, आंबा ने आंबा नु झाड़ आम्र वृक्ष को भी आंबा कहने की पद्धति है, एटले आंबा नु वन कहेवामां आवे छे, तेम लीमड़ा घना होय माटे लीमड़ा नु वन कहेवामां आवे छे, बीजा झाड़ तेमा होय छे पण जे झाड़ बहु एटले घना होय ते गणीने तेनु वन कहेवामां आवे छे। तेवी रीते शुभोपयोगी ने आम्रवननी माफक कोई वक्ते शुद्ध उपयोग होय छे तो पण शुभोपयोगनी मुख्यता गणीने एम कहेवामां आव्युं छे के ते शुभोपयोगी छे, अने शुद्धोपयोगी ने पण ते नीचे उतरे सातमा गुणस्थान माथी छठा गुणस्थान आवे एटले तेने शुभ उपयोग तो आवे छे, सातमा गुणस्थान मा शुद्ध उपयोग मा ज रहे एम नथी, तेथी तेने शुभ उपयोग तो आवे छे छता पण शुद्धोपयोगी ने कोई मळे नहीं पड़े, शुभ उपयोग आवे छे ते अपेक्षाए तेने शुद्ध उपयोगी कहेवामां आवे छे, कभी कभी आता है तो उसको मुख्यता उसकी शुद्ध उपयोगी। आवुं बधुं छे समझाणुं कई, आमां आ विस्तार छे, अने बाकी तो समयसारनी 320मी गाथा जैसेनाचार्यनी 248 गाथामां टीका छे ने ते वात अहींयां पाछी 341मां पाने कही छे, 341मां पाने 181 गाथा जैसेनाचार्यनी टीका छे। शू कहे छे के जे शुभ अशुभ विनानो शुद्ध उपयोग छे, अर्थात शुद्ध चैतन्य द्रव्यनो जे शुद्ध उपयोग छे तेमा द्रव्यार्थिक नयथी भेद कया, पण पर्यायथी जोवो तो ते शुद्ध उपयोगनो करता द्रव्य नथी। द्रव्यार्थिक नय ने भेद पड़े बिना कहेंगे तो उसके वो जीव को ही शुद्ध उपयोगी शुभ उपयोगी कह दिया, पण पर्यायथी जोवो तो ते शुद्ध उपयोगनो करता द्रव्य नथी। यानी भेद करके अगर सच में देखना है तो पर्याय का करता पर्याय कहेंगे, द्रव्य उसका करता नहीं है, माटे ते भिन्न छे। ए शू कहूं के मोक्ष मार्गना परिणाम जे शुद्ध उपयोग छे तेने ते पारिणामिक भाव के जे त्रिकाल छे ते करतो नथी, क्योंकि पारिणामिक भाव तो ध्रुव रूप है। तो ये जो पलटने वाला अंश उसको अलग बताया है, पण पर्याय करे छे। तेथी शुद्ध उपयोग ने त्रिकाणी पारिणामिक भाव थी भिन्न पण रह गया। एक मिनट, सॉरी, केम के तो त्रिकाण छे ज ध्रुव छे, माटे ते मोक्षना ने मोक्षना कारणना परिणाम ने ते पारिणामिक भाव करतो नथी। पारिणामिक भाव ने ध्रुव भाव हमेशा रखा है, और बाकी जो चार पर्याय रूप जो भाव है कौन से औपशमिक क्षायमिक क्षायुषमिक ये सब जो कौन से अवधय की सब पर्याय रूप भाव है, तो वो पारिणामिक भाव उसको नहीं करता ये कह रहे हैं, क्योंकि स्वभाव को अलग निकाला है। हाँ,
यहाँ पर जो बताया है मोक्षना कारण, तो मोक्षना कारण ना परिणाम ने ते पारिणामिक भाव करतो,
मोक्षना
तो
कारण मोक्ष
मोक्षना कारण यानी कौन से भाव होंगे,
किसको कहा मोक्ष के कारण? नहीं देखो, ये पर्याय की बात चल रही, पारिणामिक भाव नहीं, वो तो देखो। हाँ, पर उसमें मोक्ष के कारण किसको कहेंगे? हाँ, पर उसमें से मोक्ष का कारण किसको कहेंगे? अभी उसको सार्वक्षमिक नाम मत दो, वो बराबर है। आप अन्य भाषा में क्या कहेंगे? सात तत्व में क्या कहेंगे? सात तत्व में क्या कहेंगे उनको? संवर और निर्जरा होंगे, और यहाँ क्या कहेंगे? समय दर्शन ज्ञान चारित्र कहेंगे, शुद्ध उपयोग कहेंगे, ये मोक्ष का कारण।
320
वो तीनों भाव इसलिए कि वो सम्यक दर्शन में होते हैं, सार्वक्षमिक सम्यक तो होता है, सार्वक्षमिक चारित्र होता है, इसलिए उसको। हाँ नहीं, इनको वो बात नहीं समझ में आई, यह हमके सिंपल भाषा में बोलना है। मोक्ष का मार्ग समय दर्शन ज्ञान चारित्र कहो, संवर निजरा कहो, बात एक ही है, और यहाँ के उपयोग में बताना है तो शुद्ध उपयोग कहो।
यहाँ पर यह बता रहे कि द्रव्य पर्याय का कर्ता नहीं है, ये बात बता रहे, पारिणामिक भाव करतो नथी, यानी द्रव्य जो है वो कोई भी पर्याय का परिणमन नहीं करता है, परंतु पर्याय का परिणमन पर्याय करती, ये बात यहाँ सिद्ध कर रहे।
पेन कहाँ गया? थैंक यू। हाँ देखिए, यानी अन्य अन्य जगह अन्य अन्य अपेक्षा से बात आती है, परंतु हमें मूल बात समझना चाहिए। अब यहाँ पारिणामिक भाव को अगर जुदा देखेंगे हम त्रिकाल, तो उसको कारण नहीं कहेंगे, पर यहाँ द्रव्य ही किसका करता है कहने से पूरा अखंड द्रव्य लिया, पर्याय के साथ अभेद करके बताया है, परंतु स्वभाव वो कभी पर्याय रूप से परिणमता नहीं है, वो स्वभाव हमेशा कायम त्रिकाल ध्रुव ही रहता है, ये बात ख्याल में रखकर इसको भी समझना है। यानी जहाँ कोई भी अपेक्षा तो मूल बात पर वो पक्का करते हैं स्वामी जी। बात तो यहाँ चल रही कि आत्मा ही शुभ रूप होता है, आत्मा ही अशुभ होता है, आत्मा ही शुद्ध रूप हो रहा है कह रहे हैं, तो वो पूरा अखंड अभेद करके बता रहे हैं। तो उसमें अगर स्वभाव की अपेक्षा बात करेंगे तो स्वभाव तो हमेशा ध्रुव ही रहेगा, स्वभाव कभी पलटेगा नहीं, पलटने का भी जगह का स्वभाव है, परंतु वो पलटने वाला अंश, उसकी बात हम अलग देखते हैं। वो पर्याय भिन्न है और पारिणामिक भाव जुदा है, यही बात यहां बताए। देखो ते मोक्षना के मोक्षना कारण ना परिणाम ने, परिणाम ये पर्याय है ना दोनों ही, मोक्ष भी पर्याय है, मोक्ष मार्ग का मोक्ष का कारण है, मोक्ष का मार्ग वो भी पर्याय है। तो कहते पारिणामिक भाव तेने करतो नथी, पण पर्याय करे छे, अने पर्याय ही अपने षटकारक रूप से परिणमती है। तेथी शुद्ध उपयोग ने, शुद्ध उपयोग ने ये मोक्ष का कारण लिया यहाँ पर है ना। त्रिकाणी पारिणामिक भाव थी भिन्न पण कहेवामां आवे छे, पण कहेवामां आवे छे, एने वो भी अपेक्षा ख्याल में रखना है हमें। नहीं, द्रव्य में कारक गुण होते हैं, द्रव्य में जो षटकारक है वो गुण रूप है, स्वभाव रूप है, षटकारक नाम के गुण है। हमें आत्मा की 47 शक्तियों में देखे थे,
कभी कभी द्रव्य और पर्याय मिलकर उसमें षटकारक लग रहे।
हाँ, पर्याय के साथ अभेद करके द्रव्य के षटकारक कहेंगे, पर्याय को अभेद करके, जैसे अभी द्रव्य ही उस रूप परिणमता है कहा ना, उस अपेक्षा से कहेंगे द्रव्य ही उसका कारण है, द्रव्य अपने पर्याय को करता है, द्रव्य ही उसके साथ, इस तरह से उसके वो अभेद करके बताते हैं। उस अपेक्षा से बताना है, पर स्वभाव को अगर बताना है तो उसको स्वभाव को अलग ही रखना है। जीणो बहु छे बापू, आवो मार्ग छे। आम त्या समयसार ने 320 गाथा में जयसेनाचार्य की टीका छे, एनी 341 पाने छे संस्कृत में जयसेनाचार्य की टीका छे। शू कहूं कि अहिया जे पहला गुणस्थान थी त्रीजा गुणस्थान सुधी अशुभ उपयोग कहो छे ते मुख्यता नी अपेक्षाए कहो छे, बाकी गौणपणे तेने शुभ उपयोग पण आवे छे, पण गौणपणे कभी शुद्ध उपयोग नहीं होगा। पहले से 3 तक अज्ञानी है ना वो, तो क्या कहा, शुभ उपयोग गौणपणे से कह सकते हैं, परंतु क्या वहां शुद्ध उपयोग होगा कभी पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में? नहीं होगा। चौथे पांचवे छठे में शुभ उपयोग की मुख्यता है, शुद्ध उपयोग कभी कभी होगा, अब वहां अशुभ उपयोग भी चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, परंतु उसकी मुख्यता ने वहां अशुभ का नाम भी नहीं लिया है, परंतु शुद्ध और शुभ की मुख्यता ली है वहां पर। हवे चौथा गुणस्थान थी छठा गुणस्थान सुधी शुभ उपयोग कहो छे ते मुख्यपणे गणी ने कहो, बाकी एने शुद्ध परिणति पण होय छे। परिणति यानी जितनी वितरागता है वो नष्ट नहीं होती है, भगवान के दर्शन भक्ति पूजा करते समय वितरागता चली जाती है क्या समय दृष्टि की और मुनि की? नहीं जा, वो तो उतनी तो वितरागता चल रही है। तो कहते शुद्ध परिणति पण होय छे, निरंतर यानी शुद्ध, निरंतर कहने की जरूरत नहीं, उपयोग नहीं, यानी शुद्ध परिणति है, शुद्ध उपयोग नहीं है। शुद्ध उपयोग तो कोई वक्ते होय छे, ते माटे शुभ उपयोग ने प्रधानता गणी ने चौथे पांचवे ने छठे गुणस्थाने शुभ उपयोग छे एम कहूं छे, अने सातमा गुणस्थान थी ते शुद्ध उपयोग छे एम कहूं छे। ते सातमा गुणस्थान वालों नीचे छठे गुणस्थाने आवे छे तो पण तेने शुद्ध उपयोग ने मुख्यता गणवामां आवी छे, आवुं बधुं क्यां समझवा जाऊं? अहीं तो एम कहूं छे के पंचम गुणस्थाने जेने आत्मानो अनुभव छे तेने पण कोई वक्ते शुद्ध उपयोग आवे छे। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय त्रणनो भेद भूलीने उपयोग अंदर जामी जाय छे पण कोई वक्ते। तेथी ये ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय समझ में आता है क्या है, और ज्ञाता नहीं, ज्ञाता है ने जानने वाला, ज्ञायक, ज्ञायक तो मैं स्वयं, बस ज्ञान है ने वो पर्याय उसके, जानने रूप पर्याय वो ज्ञान हुआ, ज्ञान सबका हुआ स्व का पर का, ज्ञाता मैं स्वयं नहीं, ज्ञान मैंने, मैं ज्ञाता जानने वाला मैं हूँ, ज्ञानी जानने में जाना मैंने वो ज्ञान हुआ, मुझे ज्ञान हुआ, मुझे समझ में आया, मैंने इसको जाना, ये मुझे ज्ञान हुआ, इन्हें वो पर्याय, और ज्ञेय ने जिन संबंधी ज्ञान हुआ वो ज्ञेय, उसमें कोई अभी भेद नहीं रहा, वो अखंड अभेद करके उसमें जम गया। त्रणो भेद भूली ने उपयोग अंदर जामी जाए छे, पण कोई वक्त है। गेय तो परद्रव्य हुआ, स्व भी होता है पर भी होता है, और ज्ञान यानी वो जानने की पर्याय, ज्ञाता यानी वो मैं स्वयं ज्ञायक, जानने वाला। सब अपने अपने ज्ञाता है पर मुझे उनसे कुछ मतलब नहीं, ज्ञाता कहने से मैं स्वयं ज्ञायक, और जो जानने में आ रहा है वो मेरा ज्ञान, और किस संबंधी ज्ञान है वो गेय। तेथी तेने शुभ उपयोग नी मुख्यता गणी ने, यानी ऐसा उपयोग शुद्ध उपयोग होता है पर कभी कभी होता है। अंतरंग में ये ऐसा जो जिसको कहेंगे कि आत्मा का अनुभव रूप उसी में लीनता, ये कभी कभी होगी। बाकी तो उस संबंधी विकल्प चलेंगे, शास्त्र के विकल्प चलेंगे, भगवान के दर्शन पूजा दान ये सब चलेगा। तो कहते हैं वो शुद्ध उपयोग कभी कभी होता है, इसलिए उसको शुभ उपयोगी कहा मुख्यता से, ये कह रहे हैं। शुभ उपयोग ने मुख्यता गणी ने, जे वन में आंबा घना होए ने बीजा झाड़ पण होए छता तेने आंबा गणी ने आम्रवन कहेवामां आवे छे तेम। आपने देखे होगे ऐसे अलग अलग आम्रवन, तेम शुभ उपयोगी कहेवामां आवे छे। तेम शुभ उपयोगी ने कोई वार शुद्ध उपयोग पण होय छे, तो पण प्रधानपणे शुभ उपयोग कहेवामां आवे छे। हवे आवी वातु छे, अने शुद्धोपयोगी ने पण नीचे उतरे छठे गुण स्थाने आवे एटले शुभ उपयोग कोई वक्ते आवे छे, तो पण प्रधानपणे शुद्धोपयोग कहेवामां आवे छे। अने छेल्ले चरणानुयोगमां तो शुभ भाव होवा छतां शुद्ध उपयोगनी भावना छे, लक्ष्य त्यां छे, तो तेने शुद्ध उपयोगी कह्यो छे, है ना। अलग अलग अपेक्षा से, क्योंकि उसके जो झुकाव कहाँ है उसका तो शुद्ध उपयोग शुभ भाव के समय भी, इसलिए उसको कह देते, कह देना अलग बात है। आवा प्रकार छे, आहा हा, त्यां गाथा 271 थी 275 सुधी कहूं छे ने, के शुभ भाव होवा छता तेने शुद्ध उपयोग नी अंदर भावना छे, शुद्ध उपयोग करवानो भाव छे, माटे तेने शुद्ध उपयोग कही दीदो छे, कह दिया। धीमे थी समझवानी वात छे बापू, वितराग मार्ग बहु सूक्ष्म छे, तेने बराबर जाणवो समझवो पड़शे। जो हाँ सर्वोत्कृष्ट मोक्ष दशा चाहिए वाली बात है, तो उसका मार्ग भी जो सूक्ष्मता है वो पकड़ में लेना है, बस ज्ञान में तो लेना है, और कुछ करने धरने की तो बात है ही नहीं है। कहचे कि ते शुद्ध उपयोग एटले के मोक्षनो मार्ग, यहाँ लिखा है ना शुद्ध उपयोग एटले मोक्षनो मार्ग, ऊपर जिसको मोक्ष का कारण कहा था, तेनु फल मोक्ष छे। अरिहंतों के भी भाव मोक्ष वहाँ जीवन मोक्ष कहा है, तो मोक्ष कहते हैं वहाँ। द्रव्य मोक्ष तो जब अरिहंतों से सिद्ध दशा होगी तब होगे, कर्मों से भी मुक्त होगे, परंतु यहाँ शुद्ध उपयोग का फल वाला जो मोक्ष है, यानी केवल ज्ञान वगैरह वितरागता प्रकट हुई है, तो वो उनके भी होगा। अब नेक्स्ट पेज में नीचे जो लाइन के नीचे है ना, शुद्ध उपयोग नु फल, हमना गाथा 11 कैसे ने, पहली गाथा 6 कही गया के शुद्ध उपयोग नु फल मोक्ष छे, शुभ नु फल स्वर्गादि छे, ने अशुभ नु फल नरक तिरियन चांदी हल्की गति छे। पण हवे कहे छे के ते शुद्ध उपयोग अने तेनु फल जे केवल ज्ञान छे, एम कहू ने आमा के शुद्ध उपयोग अने छेल्ला बे गुण स्थानों मां शुद्धोपयोग नु फल, पण ते मोक्षनी पर्याय ने मोक्षनो मार्ग अर्थात ते शुद्धोपयोग अने शुद्धोपयोग नु फल पारिणामिक भाव थी भिन्न छे। त्रिकाण जे पारिणामिक भाव छे ते मोक्षना परिणाम ने करतो नथी, यानी स्वभाव भाव को यहाँ अलग बताया, तथा मोक्षना मार्ग ने पण ते करतो नथी, केम के ते परिणति छे, पर्याय छे, परिणमन छे। जारे ध्रुव छे ए परिणमन ने करतो नथी, आवी झीणी वातु छे। एक ज वात पकड़ीने बेसे अने कई अपेक्षा थी कहूं छे ते न समझे तो न चाले, अलग अलग अपेक्षाओं से बात आती है, सबको बराबर समझना चाहिए। तेथी त्या 341 पाने कहूं के मोक्ष नो मार्ग द्रव्य थी कथनचित भिन्न छे। द्रव्य थी ने यहाँ द्रव्य किसको कहा? परिणामी भाव। कहीं कहीं द्रव्य तो गुण पर्याय वाले द्रव्य को भी द्रव्य कहेंगे, और कहीं अकेले वो जो द्रव्यांश जिसको कहेंगे, परिणामिक भाव को भी द्रव्य वस्तु ऐसा कहेंगे। यहाँ तो द्रव्य तो पहले तो इन जनरल द्रव्य कहा कि जिस समय वो राग रूप परिणमता है वो द्रव्य ही राग हुआ है, वो इन जनरल कहा, परंतु उस समय भी स्वभाव है वो उस रूप नहीं हुआ है, पर्याय में हुआ है। पर्याय की अपेक्षा से हम पूरा अखंड अभेद करके द्रव्य को गिना, पर्याय के साथ अभेद करके अगर गिनते हैं तो द्रव्य ही राग रूप हुआ ऐसा कहेंगे, शुभ रूप या अशुभ रूप या शुद्ध रूप, परंतु उस समय भी स्वभाव जुदा है और पर्याय जुदा है। ख्याल में आई बात? ये अभेद करके गिनेंगे तो उस रूप हुआ कहेंगे हम, कहना बात है, क्योंकि हमने अभेद को अभी लक्ष्य किया है। ये ज्ञान का गेय है, ज्ञान में है, परंतु दृष्टि का विषय जो है स्वभाव को अलग से हम गिनते हैं तो स्वभाव कभी परिणमित होकर पर्याय रूप नहीं हुआ है, स्वभाव तो स्वभाव कायम रहेगा, ये कहना चाहते। आमा बधु थोड़ू थोड़ू कहूं छे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी वहां लिखा है अथ परिणामम वस्तु स्वभावत्वेन निश्चित नोति, उसका ट्रांसलेशन नेक्स्ट पेज है। हवे परिणाम वस्तु नो स्वभाव छे एम नक्की करे छे। कल आपको पूछा था ना, परिणाम ने पलटना वस्तु के स्वभाव में है कि नहीं है? पलटने का स्वभाव है ना उसका, कायम रहने का स्वभाव है, वैसे पलटने का भी स्वभाव है, ये कह रहे हैं। अब 10 की गाथा को पढ़ेंगे हम। नथि विना परिणामम अथो अथम विनेह परिणामो दौवगुण पज्जयथो अथो अथिक्थ निवत्तो। नास्ति विना परिणामम अर्थो अर्थम विनेह परिणामः द्रव्यगुण पर्ययस्थो अर्थो अस्तित्व निर्वृत्तः। परिणाम विनन पदार्थनेन पदार्थ विन परिणाम चे गुण द्रव्य पर्ययस्तितने अस्तित्व सिद्ध पदार्थ छे। यहाँ पदार्थ कह दिया है, द्रव्य गुण पर्याय पूरा अखंड अभेद करके, यहाँ स्वभाव को अलग करके बात नहीं हो रही है। ख्याल में आती है? पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, अर्थ कहो, बात एक ही है। ये कौन सा जिसको हम गुण पर्याय वत द्रव्यम वाला जब कहेंगे उसकी बात यहाँ चल रही है। देखो पढ़ेंगे इसको, यहाँ लिखा है ना नत्थि विना परिणामम अथो, यानी परिणाम के बिना अर्थ नहीं, यानी पदार्थ नहीं होता, और जो परिणाम वो भी द्रव्य के बिना नहीं होगा। अभी आप कौन कोई नहीं आए थे ना इसमें से, अभी शिविर में, तो विशेष है वो सामान्य के बिना नहीं होता और सामान्य वो विशेष के बिना नहीं होता, इस तरह से वहां बात आई थी। देखो हम इसका अन्वयार्थ देखते, पहले पेज नंबर 56 पर है, वहां से अन्वयार्थ टीका भावार्थ देख के फिर जैसेन आचार्य की टीका पढ़ने के लिए पीछे आएंगे। जहां गुजराती है ना हरिगीत, उसके नीचे आपका पेज नंबर देख लो, मिल गया अन्वयार्थ। इह यानी आलोकमा परिणामम विना, इह कहाँ आया? विनेह, विना इह विनेह। आलोकमा परिणामम विना, परिणाम विना अर्थ नास्ति पदार्थ नथी। तो कितने पदार्थ है इस विश्व में? मनीषा अनंत, और जाति अपेक्षा कौन सा? हाँ अकेला, बाकी कुछ नहीं इस विश्व में। ख्याल में आए? हाँ क्या है, बारंबार उसे जरा पॉलिशिंग चाहिए, है ना? देखो आलोकमा परिणामम विना, परिणाम विना अर्थ नास्ति, पदार्थ नथी। अर्थ कहो, पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, तत्व कहो, वो हमने पंचाध्याय में तो 14-14 नाम याद किए थे उसके, अन्वय कहते हैं उसको, बहुत सारे नाम है उसके लिए। अथ अर्थ विना चाहिए, अथ विना नहीं, अर्थ विना छ के ऊपर अफार दो, अर्थ विना यानी पदार्थ विना परिणाम, परिणाम नथी। अर्थ यानी पदार्थ, द्रव्यगुण पर्यायस्थ, द्रव्यगुण पर्याय में रहेलो, अने अस्तित्व निवृत्त, निवृत्त यानी उससे रचित है, उत्पाद व्यय द्रव्यमय अस्तित्व थी बनेलो छे, अस्तित्व से बना हुआ। और अस्तित्व के साथ सत कैसा होता है, उत्पाद व्यय और द्रव्य, तो कहते उत्पाद व्यय द्रव्यमय अस्तित्व थी बनेलो छे। ये पदार्थ का उस कैसा है, द्रव्य गुण पर्याय वो उसका उसमें रहने वाला है। देखो इसकी टीका जो अमृत चंद्राचार्य ने संस्कृत में लिखी है उसका ये गुजराती अनुवाद है। परिणाम विना वस्तु हयाति धरती नथी। अगर कोई कहे पर्याय बिना का द्रव्य है तो द्रव्य ही नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि अस्तित्व ही उसको कहते हैं जो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उसको अस्तित्व कहते हैं। अस्तित्व में सब बातें आ गई, तो कहते परिणाम बिना वस्तु हयाति धरती नथी, कारण के वस्तु द्रव्यादि वड़े, द्रव्यादि में किसको लेना, द्रव्य क्षेत्र काल भावे परिणाम थी जुदी अनुभव में आवती नथी, एटले जोवामां आवती नथी। एने वस्तु है, द्रव्य है, तो उसको अपना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव होता है, केम के परिणाम विनानी वस्तु गधेड़ाना शिंगड़ा समान छे। आपने देखे गधे के सिंग, तो परिणाम की बिना की वस्तु कैसे, गधे के सिंग जैसी, यानी उसका ऐसे अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। तथा तेने जोवामां आवता गोरस वगैरह ना दूध दही आदि परिणामों साथे विरोध आवे छे। देखो परिणाम विना की बात चले ना, तो परिणाम विना वाली जो वस्तु कहेंगे हम, तो उसका किसके साथ विरोध आता है, गोरस का परिणाम यानी गोरस की पर्याय देखने में आती है। ऐसा अगर हम बिना परिणाम का गोरस नहीं है, कौन सा परिणाम है गोरस का, दूध दही छाछ वगैरह, वो क्या है, घी, ये गोरस के पर्याय है। गोरस ये सबको मिलकर हम क्या कहेंगे, उसको गोरस कहेंगे, और उसके दूध दही वगैरह वगैरह उसको पर्याय कहेंगे। तो पर्याय बिना का गोरस नहीं होगा, परिणाम बिना का गोरस नहीं है, वैसे परिणाम बिना का द्रव्य भी नहीं है। तो कहते ये न्याय की भाषा में बताएं, पहला न्याय क्या दिया, परिणाम बिना वस्तु होगी तो गधे के सिंह समान होगी। दूसरी बात क्या है कि जो प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि गोरस जो है परिणाम के साथ गोरस है, उसके साथ विरोध आ जाएगा, क्योंकि आपने बताया परिणाम के बिना वस्तु होती है, तो गोरस का और उसकी पर्याय तो जो देखने में आती है उसके साथ प्रत्यक्ष देख रहे उसके साथ विरोध आ जाएगा। दूसरी बात, जेम परिणाम विना वस्तु हयाती धरती नथी, तेम वस्तु विना परिणाम पण हयाती धरता नथी। आप कहेंगे अधरी पर्याय उत्पन्न हो रही तो नहीं, वो कोई तो वहां तो वस्तु होनी चाहिए, कारण के स्व आश्रयभूत वस्तुना अभाव में, अर्थात पोताने आश्रय रूप जे वस्तु ते न हो तो निराश्रय परिणाम ने शून्यपणानो प्रसंग आवे छे। आप कहेंगे हमारी सोने की बंगड़ी है, पर सोना ही नहीं है, हमारी बंगड़ी है बंगड़ी है बंगड़ी है कहूँ। आप कहेंगे हमारी कांच की, हमारी प्लास्टिक की है, पर तो वो वस्तु है ना कुछ वहाँ, तो बिना किसी के नहीं हमारी बंगड़ी है, और ना वहाँ कोई मेटल है ना कोई चीज़ है, और हमारी बंगड़ी है, तो कहेंगे कैसी होगी। इस तरह से ये कह रहे हैं कि स्व आश्रयभूत वस्तुना अभाव में यानी पदार्थ के बिना निराश्रय परिणाम यानी ऐसी पर्याय की जिसे कोई द्रव्य का आश्रय ही नहीं है, शून्यपणानो प्रसंग आवे छे। वही अब दूसरा पैराग्राफ, वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में अब ये पूरा पढ़ते हैं फिर उसकी चर्चा करेंगे। कुछ शब्द तो नए आने वाले हैं और अभी अटपटे लगेंगे। वस्तु तो ऊर्ध्वता कहने से वस्तु कब है? वर्तमान से लेकर भविष्य काल तक पूरी पड़ी, यानी अनादि अनंत वस्तु पड़ी है, तो वो काल की अपेक्षा उसको ऊर्ध्वता कहते हैं। सामान्य क्यों? क्योंकि उसमें जो भेद को नहीं देखते हुए क्या कहेंगे, वस्तु ये ऊर्ध्वता सामान्य है। वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्यमा सहभावी विशेष रूप साथे साथे रहनारा विशेषो भेदो जेमनो स्वरूप छे एवा गुणोमा। क्या कहते हैं? ये द्रव्य कहे से बना है? गुणों से। वो गुण एक के बाद एक होते हैं कि एट ए टाइम होते हैं? एट ए टाइम। उसको कहेंगे सहभावी, एक साथ रहने वाले गुण। सभी कैसे एक साथ रहते और वो उसके विशेष विशेष है ना, भेद। यानी अगर गुणों की अपेक्षा भेद कर सकते हैं ना, ज्ञान गुण दर्शन गुण चारित्र भले है उतने ही क्षेत्र में, पर गुणों की अपेक्षा उसको हम भेद कह सकते हैं। वो सहभावी विशेष हो गए। सामान्य जो वस्तु है उसमें गुणों की अपेक्षा भेद करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? वो सहभावी। एट ए टाइम ये भेद विद्यमान है। पूरा वाक्य अभी नहीं हुआ है, हम एक एक पार्ट लेके उसको देख रहे हैं। फिर से पढ़ती हूँ। वरी वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्यमा सहभावी विशेष रूप। सहभावी का अर्थ क्या? साथे साथे रहनारा विशेषो। विशेषो का अर्थ होता है भेदो। जेमनु स्वरूप छे एवा कौन छे? सहभावी भेदो तो गुणों। ये गुणों का क्या विशेषण बताया उसने? गुणों का क्या कैसा स्वरूप बताया? वो सहभावी विशेष है, द्रव्य के एट ए टाइम रहने वाले भेद है, जिसको हमें द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहते ना। भाव में ये सब आ गए गुण, और उसके भेद भी हम कहेंगे ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर्य है। अब पर्याय के लिए क्या लिखा है? क्रमभावी। क्रमभावी का वो कौन से थे? गुण कैसे थे दक्षाबेन? सहभावी, यानी एट ए टाइम से। और पर्याय कैसे होती है? क्रमभावी, एक के बाद एक के बाद, एक समय में एक पर्याय, दूसरे समय में दूसरे पर्याय, तीसरे समय, वो क्रम से होने वाली है। वो भी भेद है, पर वो कैसे भेद है? क्रम से होने वाली भेद है। एट ए टाइम एक पर्याय, दूसरे समय दूसरे पर्याय, तीसरे समय चौथी पर्याय, इस तरह से। तो क्रमभावी विशेष रूप पर्यायों में रहेली, यानी पूरा द्रव्य कैसा हम डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके एट ए टाइम रहने वाले गुणों के भेद है और एक के बाद एक होने वाले पर्यायों के भेद है, और वो सब अखंड मिलकर वो वस्तु है। समझ में आएगा? एक तो ऊर्ध्वता सामान्य, यानी सामान्य रूप से वस्तु ली, उसके भेद करना है तो एट ए टाइम रहने वाले गुणों की अपेक्षा भेद कर सकते, एक के बाद एक होने वाले पर्यायों की अपेक्षा भेद कर सकते, और सामान्य रूप हम उसको द्रव्य कह सकते हैं। ऊर्ध्वता क्योंकि ऊर्ध्वता यानी कायम रहने वाला है, ऊर्ध्वता सामान्य, वो आयत सामान्य ऊर्ध्वता सामान्य, ऐसे दो भेद आते हैं उसमें, पढ़ेंगे अभी आगे। अने उत्पाद वे द्रव्यमय अस्तित्व थी बनेली छे, माटे वस्तु परिणाम स्वभाव वाली छे। उसका अस्तित्व कैसा है? उत्पाद वे द्रव्यमय है, इसलिए परिणाम स्वभावी वस्तु है। परिणाम यानी वो पर्याय रूप परिणाम ना, उसका स्वभाव है। अब ये तो थोड़ी कठिन भाषा लगती है, अभी भावार्थ में उसको खोलेंगे। हाँ, भावार्थ, भावार्थ, ये अमृतचंद्राचार्य की टीका का भावार्थ है, बाद में जयसेन आचार्य की टीका पढ़ेंगे। देखो, हाँ, जहाँ जहाँ वस्तु जोवामां आवे छे त्यां त्यां परिणाम जोवामां आवे छे, क्योंकि परिणाम बिना वस्तु नहीं और वस्तु बिना परिणाम नहीं। जेम के अभी दृष्टांत देते हैं, गोरस, यानी गोरस को पदार्थ का द्रव्य का, तेना दूध दही घी छाछ वगैरह परिणाम सहित जोवामां आवे छे, यानी किसी न किसी फॉर्म में ही वो पाया जाएगा। गोरस जहाँ परिणाम, ये तो हो गया, जहाँ वस्तु है वहां परिणाम है, उसके लिए दृष्टांत दिया। अब कहते हैं जहाँ परिणाम नथी त्यां वस्तु पण नथी। पहले क्या सिद्ध किया? जहाँ वस्तु है वहां परिणाम है, और उसके लिए दृष्टांत दिया गोरस का। अब कहते जहाँ परिणाम ही नहीं वहां वस्तु भी नहीं है। जेम के કાળાશ સુવાળ વગેરે પરિણામ નથી તો ગધેડાના સિંગડારૂપ વસ્તુ પણ નથી. વો સિંહ કે જો ડિસ્ક્રિપ્શન ક્યાં ઉન્હોને માટે સિદ્ધ થયું કે વસ્તુ પરિણામ વિના હોતી જ નથી. જેમ વસ્તુ પરિણામ વિના હોતી નથી તેમ પરિણામ પણ વસ્તુ વિના હોતા નથી, કારણ કે વસ્તુરૂપ આશ્રય વિના પરિણામ કોના આધારે રહે? ગોરસરૂપ આશ્રય વિના દૂધ દહીં વગેરે પરિણામ કોના આધારે રહે? કોઈ વસ્તુ તો હે તભી તો ઉસકે પર્યાય કહેંગે હમ. વળી વસ્તુ તો દ્રવ્યગુણ પર્યાયમય છે. દેખો યે બેસિક હૈ જિસકો કહેંગે ના, જો સિદ્ધાંત પ્રવેશિકા વગેરે જો કે વો કોઈ ગ્રંથ નહીં હૈ, યે સભી ગ્રંથો કા વો નિચોડ હૈ. ઉસમે જો હમ સીખ રહે હૈ યા સીખતે હૈ, યે બડે ગ્રંથો મે વહી બાત બતાઈ હૈ. ઉસકો સિમ્પલ શબ્દો મે પહેલે હમકો સિદ્ધાંત પ્રવેશિકા કી ભાષા મે બતાયા થા. દેખો વસ્તુ તો દ્રવ્યગુણ પર્યાયમય છે. ત્યાં ત્રૈકાલિક, ત્રૈકાલિક એને અનાદિ અનંત ઉર્ધ્વ પ્રવાહ સામાન્યતે દ્રવ્ય છે. એને અનાદિ અનંત રહેને વાલા જો સામાન્ય કહેંગે વો દ્રવ્ય હો ગયા. ઉસમે ગુણો કે ભી ભેદ હોતે હૈ, પર્યાયો કે ભી ભેદ હોતે હૈ, પરંતુ ભેદ કિયે બિના ઉસકો યહાં સામાન્ય કહા. તો કહેતે ઉર્ધ્વ પ્રવાહ સામાન્યતે દ્રવ્ય હૈ. પ્રવાહ લિયા, પ્રવાહ કોણ સા હૈ, ક્યાં પર્યાય ઉસકી બાત નહીં કી, વહ હૈ અનાદિ અનંત પ્રસરા હુઆ એસા વો દ્રવ્ય હૈ. ઉસકો ઉર્ધ્વતા સામાન્ય કહા. સાથે સાથે રહેનારા ભેદો તે ગુણો છે. ભેદ હૈ ને વો, ભલે જ્ઞાન ભી પૂરે ભાગ મેં, દર્શન ભી પૂરે ભાગ મેં, સુખ ભી પૂરે ભાગ મેં હૈ, પરંતુ જ્ઞાન જુદા હૈ, દર્શન જુદા હૈ, સુખ જુદા હૈ, ચારિત્ર જુદા હૈ, ઉસકા અપના અપના ભાવ જુદા જુદા હૈ, ઉસકા અપના અપના કાર્ય જુદા જુદા હૈ ને. અભી યહાં કાર્ય કી બાત નહીં, વો ગુણ કા અપના સ્વરૂપ જુદા જુદા હૈ. ઇસલિયે કહેતે કે પરંતુ સાથ મેં રહેતે હૈ, ફિર ભી ઉનમેં ભેદ હૈ. એક ગુણ હૈ વો દૂસરે ગુણરૂપ નહીં હૈ, ઇસલિયે ઉસમેં ભેદ હૈ. તો કહેતે કે સાથ સાથ રહેને વાલે જો ભેદ હૈ, વહી ગુણ હૈ, અને ક્રમે ક્રમે થતા ભેદો તે પર્યાયો છે. અને દ્રવ્ય કો બિના ભેદ કિયે ક્યાં કહેંગે વો અનાદિ અનંત ફૈલા હુઆ હમકો દિખતા હૈ, પરંતુ ઉસકે ભેદ કરને જાઓ તો એટ એ ટાઈમ ભેદ કિયે તો ગુણો કો કહેંગે, ઓર સમય સમય કે ભેદ કરેંગે ઉસકી દ્રવ્ય કી અવસ્થા કો દેખના હૈ. હમકો સમય કો નહીં દેખના, દ્રવ્ય કી અવસ્થા કો પ્રતિ સમય અલગ 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 દિખ રહા હૈ, તો વો ક્યાં હૈ, વો પર્યાય હૈ, વો ક્રમ સે હોને વાલી હૈ. બિના ભેદ કિયે ઉસકો ઉર્ધ્વતા સામાન્ય કહા, ઉસકો સામાન્ય સે દ્રવ્ય કહે દિયા, ઓર સાથ સાથ રહેને વાલે ભેદ કિયે તો ગુણ હુએ, ઓર એક પૈ એક કે બાદ એક કે બાદ એક કે બાદ સમય સમય મેં જો ભેદ હુગે વો સારી પર્યાય કહેલાય. આમાં દ્રવ્ય ગુણને પર્યાયની એકતા વિનાની કોઈ વસ્તુ હોતી નથી, અને સબકો મિલકર અખંડ અભેદ વો વસ્તુ કહેલાતી. બીજી રીતે કહીએ તો વસ્તુ ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યમય છે, અર્થાત જે ઉપજે છે, ઉપજે છે ને ઉત્પાદ વિણસે છે અને ટકે છે. અભી વસ્તુ હી ઉત્પન્ન હોતી હૈ ને, એક પર્યાય રૂપ સે ઉત્પન્ન હોતી હૈ, દૂસરે પર્યાય રૂપ સે નાશ હોતી હૈ, ઓર કાયમ અપને દ્રવ્ય સ્વરૂપ સે કાયમ રહેતી. આમ તે દ્રવ્યગુણ પર્યાયમય અને ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યમય હોવાથી દો બાતે બતાઈ, એક તો ઉત્પાદ દ્રવ્યગુણ પર્યાયમય અને દૂસરી વાત ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યમય. મેરે ખ્યાલ સે પંચાધ્યાય મેં યે બાત બહુત વિસ્તાર સે આઈ થી ને, દો પ્રકાર સે ઇસી નહીં ઇસમે તો આગે આતી હૈ, પરંતુ યહી વિષય ઓર એસે દો પ્રકાર કે ભેદ કિસમે આયે થે, પંચાધ્યાય મેં આયે થે પ્રવચન. અભી હમારા કોઈ ગ્રંથ હુઆ ઉસમે યે ઇસ પ્રકાર કે દો ભેદ કિયે થે, તે પંચસ્થી કાય મેં એસે ભેદ કિયે થે. બહુ દિન હુએ ઉસકો, શાયદ પંચાધ્યાય મેં આયે થે. ફિર સે ચલો ઠીક હૈ. આમ તે દ્રવ્યગુણ પર્યાયમય, વસ્તુ કૈસી દ્રવ્યગુણ પર્યાયમય અને ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યમય હોવાથી તેમાં ક્રિયા થયા જ કરે છે. ક્રિયા કા અર્થ કે પરિણમન હોતા રહેતા, માટે પરિણામ વસ્તુનો સ્વભાવ જ છે. अभी जयसेन आचार्य की टीका को पढ़ेंगे संस्कृत में से, पेज नंबर 55 जहां वो गाथा है ना 10, उसके नीचे बीच में जो लिखा है दो लाइन के बीच में, अथ नित्य एकांत क्षणिक एकांत निषेधार्थम परिणाम परिणामिनो हो परस्परम कथंचित अभेदम दर्शयति। यानी नित्य एकांत पक्ष है, नित्य एकांत वाला कौन सा पक्ष है कि पर्याय होती नहीं मानने वाला, सर्वथा कूटस्थ है, नित्य एकांत एकांत मत है, वो पर्याय को स्वीकार नहीं करता है, वस्तु सर्वथा नित्य ही है ऐसा मानता है, परिणाम होता ही नहीं इसे मानने वाला, ये वेदांत मत है। नित्य क्षणिक एकांत क्या है, सर्वथा एकांत है ना, सर्वथा यानी सर्वथा वस्तु क्षणिक ही होती है, पर्याय की अपेक्षा क्षणिक ऐसा नहीं कहते, वो अपेक्षा लगाते ही नहीं है, अपेक्षा यानी स्याद वाद कथन तो जिनागम में ही होता है, बाकी उनके तो अपने अपने एकांत मत है, नहीं तो वस्तु ही नष्ट हो जाती है। अरे वस्तु ही नष्ट होने होती है तो अभी कुछ कोई बता रहा है और कोई सुन रहा है तो बताने वाला भी नहीं रहा सुन रहा है, एक वाक्य भी पूरा नहीं होगा तो उसका अर्थ भी कैसे समझेगा, बहुत सारे दोष आते हैं उसका मान्यता में। तो नित्य एकांत और क्षणिक एकांत का निषेध करने के लिए परिणामिनी पर्याय और परिणामिनः ये द्रव्य द्रव्य और पर्याय का परस्पर में कथनचित अभेद है वो दर्शते हैं, यानी परिणाम बिना द्रव्य नहीं और द्रव्य बिना परिणाम नहीं, इस तरह से बताएंगे। नत्थि बिना परिणामम अत्थो मुक्त जीवे तावत कथ्यते, पहले मुक्त जीव में बता रहे, तो मुक्त जीव तो परिणाम के बिना होगा कि नहीं, नहीं होगा। सिद्ध पर्याय रूप शुद्ध परिणामों बिना शुद्ध जीव पदार्थो नास्ति, ये जयसेन आचार्य की विशेषता है, पहले वो शुद्ध की बात करेंगे, मिथ्यात्व को भी बताना है तो पहले सम्यक्त्व का वर्णन करके उसके विपरीत वो मिथ्यात्व ऐसा कहेंगे, ये उनकी खासियत है। तो कहते सिद्ध पर्याय रूप जो शुद्ध परिणाम है उसके बिना शुद्ध जीव पदार्थ नहीं पाया जाता, कस्मात क्यों संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि भेदे अपि प्रदेश भेद अभावात। देखो क्या कहना चाहते हैं, किसमें से किसमें भेद बताना है, अभी आपने जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव बहुत समझा था ना विस्तार से, अभी यहाँ परिणाम और द्रव्य पर लगाना है आपको। देखो हमको द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनमें किसमें लगाना है, द्रव्य को भी लगाना है और पर्याय को परिणाम को भी लगाना है। अब क्या कहते हैं, संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि, यानी एक का नाम है द्रव्य एक का नाम है परिणाम, परिणाम कहो या पर्याय कहो एक ही बात है, भेद किसमें है, दोनों के नाम में भेद है। लक्षण द्रव्य का लक्षण क्या है, गुण और पर्याय के समूह को वो द्रव्य कहेंगे, और पर्याय का लक्षण क्या कहेंगे, उसके विशेष कार्य को परिणाम कहते हैं, एक एक समय वाली है वो क्षणवर्ती है उत्पाद विरूप होती है वगैरह वगैरह, यानी दोनों का लक्षण जुदा है। प्रयोजन यानी इसका अपना प्रयोजन है इसका अपना प्रयोजन जुदा है, तो संज्ञा अभी हम संख्या भी कहते हैं, द्रव्य एक है पर्याय अनेक है, द्रव्य तो अनादि अनंत एक है और पर्याय तो अनंत है, एक एक समय वाली एक एक गिनेंगे, तो भी इसमें भेद होने पर भी अभी उसमें कैसा भेद नहीं है, तो कहते हैं कि प्रदेश भेद अभावात, दोनों का द्रव्य वही है, अभी हम जीव की बात करेंगे तो इसका ये भी जीव द्रव्य ये भी जीव द्रव्य, जीव द्रव्य की ही पर्याय है ना, तो उसमें क्षेत्र जुदा जुदा होगा कि वही होगा, जीव की जो केवल ज्ञान की पर्याय अभी तारावीन सुनो वो कहां तक फैली है, ये असंख्य पूरे लोक में, पूरे लोक में उनको उनको नक्की करने दो। देखो जीव कितना प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेश। अभी महावीर भगवान की हाइट कितनी थी मालूम है? 7 हाथ। तो उनके केवल ज्ञान की पर्याय कितनी लंबी होगी? उनके शरीर प्रमाण होगी कि नहीं होगी? ये कहना चाहते, वो उसके आत्म प्रदेशों से बाहर नहीं जाती कभी। हाँ, जानने के लिए उनके तो पूरा लोकालोक, लोक के आलोक भी जानते हैं, अपने में रहकर पूरे को जानते हैं, पर उसका प्रदेश कितना है? जितना बड़ा द्रव्य उतनी ही बड़ी पर्याय। भले गुण एक एक जैसे पूरे क्षेत्र में फैला है, वैसे एक एक पर्याय भी पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। ज्ञान की पर्याय मति ज्ञान हो या केवल ज्ञान हो, कौन सी बड़ी है क्षेत्र अपेक्षा? दोनों समान है। इतना बड़ा द्रव जीव द्रव्य होगा तो वही उसकी पर्याय होगी, उसी में जहां द्रव्य है वहीं पर्याय हो रही है। वो पर्याय उतना ही, ऐसा नहीं कहा, वही है। उतना कहने से उतना जुदी बाजू में हो सकता है, ऐसा नहीं है। उतना नहीं कहा, वही पर्याय है। यानी प्रदेश भेद का अभाव है। जो प्रदेश द्रव्य का है वही प्रदेश पर्याय का है। अभी यहां गुण को बीच में नहीं ले रहे हम, द्रव्य और पर्याय की साथ बात। प्रदेश यानी क्षेत्र, उसका विस्तार। देखो भेद का अभाव है, भेद का अभाव है ना, अभेद है। प्रदेश की अपेक्षा वो जुदे नहीं हो सकते। यानी जो प्रदेश द्रव्य का है वही प्रदेश परिणाम का है। यहाँ तक समझ में आएगा?
जो द्रव्य द्रव्य का है वही परिणाम का है।
देखो यहाँ क्या कहते, देखो प्रदेश भेद अभावात, यानी प्रदेशों का भेद नहीं है। यानी क्या? प्रदेश से अभेद है, पृथक्त्व नहीं है, एक है। उनका कौन सा संबंध है मनीषा बेन? हाँ, कौन सा संबंध है? हाँ, तो आपने क्या बताया? नित्य किसके साथ होगा? गुण का। बहुत अच्छा। देखो ये याद करने की बात नहीं, ये समझने की बात है। एक बार समझ लो बराबर ठीक से। ये कोई याद से, क्योंकि याद की हुई चीज कभी भी भूल सकते। अगर उसको सही समझ में आ जाए तो वहां तो भूलने का बस उसको निर्णय करना है, कर लिया एक बार तो ये तो आसान है। क्या कहते हैं? प्रदेश भेद अभाव। अब आगे की बात। अथम विना यह परिणामो मुक्त आत्म पदार्थ विना, क्योंकि वो मुक्त जीव पर लगा रहे हैं ना। यह जगति, यानी जगति जग में, विश्व में, लोक में शुद्धात्म उपलम्बन लक्षण सिद्ध पर्याय रूप शुद्ध परिणामो नास्ति। यानी मुक्त आत्म पदार्थ के बिना इस जगत में शुद्धात्म उपलम्ब रूप जो लक्षण सिद्ध पर्याय है, जिसमें शुद्धात्मा की उपलब्धि है, प्राप्ति है, ऐसे शुद्ध परिणाम नहीं पाया जाता। यानी शुद्ध आत्म मुक्त जो है ना, मुक्त आत्म पदार्थ के बिना सिद्ध पर्याय नहीं पाई जाती। यानी पदार्थ ही नहीं है और सिद्ध पर्याय हुई, किसकी हुई? जीव की हुई। वहां जीव पदार्थ तो होगा, होना चाहिए। शुद्ध जीव पदार्थ है तो उसके उसकी वह पर्याय हुई है। पहले क्या बताया? बिना परिणाम का द्रव्य नहीं। अब कहते कि परिणाम है वो द्रव्य बिना नहीं है। कस्मात, क्यों? संज्ञादि भेदे अपि प्रदेश भेद अभावात्। वही कारण दिया कि संज्ञा लक्षण प्रयोजन वगैरह भेद होने पर भी प्रदेश भेद का अभाव है। जो क्षेत्र मुक्त पदार्थ का है वही क्षेत्र सिद्ध पर्याय का है। ख्याल में आती बात मनीषा बेन? थोड़ी थोड़ी, हाँ, नहीं आ रही। दव गुण पज्जयत्थो आत्मस्वरूपम द्रव्यम तत्रैव, यानी तत्रैव वहीं पर केवल ज्ञानादयो गुणाः सिद्ध रूप पर्यायश्च। क्या कहते हैं? आत्मस्वरूप द्रव्य है और वहीं पर केवल ज्ञानादि गुण है और सिद्ध रूप पर्याय है। इति उक्त लक्षणेषु द्रव्य गुण पर्यायेषु तिष्ठति इति द्रव्य गुण पर्यायस्थो भवति। यानी इस तरह से ऊपर बताए हुए लक्षण रूप जो द्रव्य गुण पर्याय में रहता है उसको द्रव्य गुण पर्यायस्थ कहा है। पर्यायस्थ होता है। स कह कर्ता कौन होता है? द्रव्य गुण पर्यायस्थ कौन है? ते अथो यानी परमार्थ पदार्थ, क्योंकि वहां सिद्ध पर्याय पर घटित कर रहे थे इसलिए उस परमार्थ पदार्थ कह दिया उसको। सुवर्ण द्रव्य पीतत्वादि गुण कुंडलादि पर्यायस्थ सुवर्ण पदार्थवत्। अभी इसको सोने की उपमा दी, सुवर्ण पदार्थ है ने सोना उदाहरण है। तो सुवर्ण पदार्थ जो है वो किससे बना है, किसमें रहता है? द्रव्य गुण और पर्याय में। तो द्रव्य में सुवर्ण द्रव्य कहा, पीतत्व आदि उसके गुण कहे, और कुंडल आदि उसके पर्याय कहा, उसमें वो रहता है कौन? सुवर्ण पदार्थ। हाँ, पीतत्व है ना पीलापना। पुनश्च किम रूप और किस तरह से है? अथित न्युवत्तम। पहले क्या बताया कि द्रव्य गुण पर्यायस्थो यानी द्रव्य गुण पर्यायस्थ, और कैसा है कि अथित न्युवत्तम, अस्तित्व से निर्मित है, रचित है, बना हुआ है। शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय आधारभूतम यत् शुद्ध अस्तित्वम तेन निवृत्तो अस्तित्व निवृत्तः। अस्तित्व निवृत्त शब्द कैसे तैयार हुआ? तो कहते शुद्ध जो द्रव्य गुण पर्याय के आधारभूत जो शुद्ध अस्तित्व है, सिद्ध की बात चल रही है इसलिए शुद्ध अस्तित्व लिया, उससे जो बना है उसको कहेंगे अस्तित्व निवृत्त। सुवर्ण द्रव्य गुण पर्याय अस्तित्व निवृत्त सुवर्ण पदार्थवत इति, यानी सुवर्ण द्रव्य गुण पर्याय के अस्तित्व से बना हुआ सुवर्ण पदार्थ के समान इसको समझना। अयम अत्र तात्पर्य अर्थ है, इसका तात्पर्यार्थ ये हुआ, यथा जैसे मुक्त जीव यानी मुक्त जीव में द्रव्य गुण पर्याय त्रयम परस्पर अविनाभूतम दर्शितम, यानी मुक्त जीव में यहाँ द्रव्य गुण और पर्याय तीनों ही आपस में अविनाभूत बताए, यानी पर्याय बिना द्रव्य नहीं है, उसके बिना द्रव्य बिना पर्याय नहीं है, गुण तो है ही है वहां पर, तो परस्पर में अविनाभूत बताए। तथा अब ये सिद्ध पर्याय में शुद्ध पर्याय की बात बताइए। अब यहाँ कहते हैं
अविनाभूत यानी क्या सुन?
हाँ, परस्पर अविनाभूत, जहाँ एक है वहाँ दूसरा होगा ही है, दूसरा है तो ये भी होगा ही, यानी द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। जहाँ जहाँ पर्याय वहाँ द्रव्य होना ही चाहिए, जहाँ द्रव्य है वहाँ पर्याय भी होनी ही चाहिए। पर्याय कहने से गुण भी है, द्रव्य गुण पर्याय तीनों को साथ में लिया है और उसको मिलकर पदार्थ कहा। अब ये संसारी जीवों पर घटित होते हैं। तथा संसारी जीवोपि मति ज्ञानादि विभाव गुणेशु, इसको विभाव गुण कहा, पर्यायों को ये विभाव गुण कहा। ये नियम सार में भी बात बताई थी, नरनारकादि विभाव पर्यायेषु, ये पर्याय को व्यंजन पर्याय को पर्याय कहा है, और वहां जो विभाव यानी जो पर्याय है ना गुणों की पर्याय, उसको विभाव गुण कहा, और नर नारकादि को पर्याय कहा, संसारी जीवों में घटित कर रहे। तो कहते संसारी जीवों पी, ऊपर भी मुक्त पदार्थ में जब कहना था ना तो केवल ज्ञानादि को गुण कहा था और सिद्ध रूप को पर्याय कहा था। सिद्ध रूप कहने से वो भी व्यंजन पर्याय ली, लंबे काल तक चलने वाली सिद्ध पर्याय इन जनरल पूरी, यानी पूरे द्रव्य की पर्याय ली थी वहां पर। तो मति ज्ञानादि विभाव गुणेशु नरनारकादि विभाव पर्यायेशु नय विभागेन यथा संभवम विज्ञेयम्, यानी नय से उसको यथा संभव जैसा है वैसे उसमें समझना चाहिए। तथैव पुद्गलादिषु अपि, यानी पुद्गलादि द्रव्यों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि वहां परिणाम बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य बिना पर्याय नहीं, वो पुद्गलों में भी घटित होगा। एवं इस प्रकार शुभाशुभ शुद्ध परिणाम व्याख्यान मुख्यत्वेन तृतीय स्थले गाथाद्वयम गतम, इस तरह से शुभ अशुभ और शुद्ध परिणाम की व्याख्यान की मुख्यता से तीसरे स्थल में दो गाथाएं गई। अरे हो गया समय, अभी कल हम इसको प्रवचन पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट पेज पर लास्ट लाए हैं पैराग्राफ छावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तपनम सदा देत हो रो अरविंद
नमो अरिहंताम नमो सिद्धाम नमो आयरियाम नमो वज्जायाम।